ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮನಾ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾ ಲಾಯೆಂಗೆ ಅಪ್ನೆ ಮೇ? ಪರಿವರ್ತನ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಮೇ ಯಾ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಭಿ ಪರಿವರ್ತನ ಕೈಸೆ ಆಯ? ದುನಿಯಾ ವಾಲೋ ಕೋ ಭಿ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಸಂದೇಶ ದೇ ಕಿ ಏಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಇಸ್ ಸಮಯ ದುನಿಯಾ ಮೇ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನ ಲಾಯೆಂಗೆ? ಸಮಸ್ಯಾಯೆ ತೋ ಬಹುತ್ ಹೈ, ಮುಷ್ಕಿಲೆ ಭಿ ಹೈ, ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯಾಧಿ ಭಿ ಹೈ, ಸಬ್ ಕುಛ ಹೈ. ಫಿರ್ ಭಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಮೇಶಾ ಯೇ ಸೋಚತಾ ಹೈ ಕಿ ಸಬ್ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋ, ಸಬ್ಕಾ ಭಲಾ ಹೋ. ತೋ ವೋ ಭಲಾ ಕೈಸೆ ಹೋಗಾ? ಪರಿವರ್ತನ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ? ಕೋಈ ಭಿ ಹಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಉಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೋ ಸಮರ್ಥ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಜೈಸೆ ಬೀಜ ಹೈ, ಉಸ್ಕೋ ಸಮರ್ಥ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ? जो संकल्प बीज है तो बीज रूप परमात्मा से जब हम अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और उस ताकत से हम उस संकल्प को फलीभूत कर सकते हैं. बीज तो परमात्मा है, शिव बाबा हमारे बीज रूप है. हम आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो जो हमें शक्ति मिलती है, जो हमें ताकत मिलती है, जो हमें रास्ता मिलता है, बाबा हमारी पालना भी करते हैं बाप के रूप में. अभी जो हमने लास्ट दो अव्यक्त मुरलियां सुनी तो बाबा ने कहा कि देखो इतनी बड़ी पालना कहीं मिल सकती है क्या? जिसको भगवान पालना दे, जिसकी परवरिश भगवान करे, इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है? भगवान हमें पढ़ाता भी है, शिक्षक बन के पढ़ाई भी पढ़ाता है, और पढ़ाई भी ऊंची से ऊंची. वो लोग तो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं, एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है, डॉक्टर बनेंगे या बैरिस्टर बनेंगे या आईएएस बनेंगे, तो एक जन्म के लिए हो सकती है. लेकिन हमारी तो अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति है हमारी पढ़ाई, फिर उसके बाद बाबा की श्रीमत भी मिलती है हमें. श्रीमत भी कितनी श्रेष्ठ है. कभी कभी तो बाबा इतनी कड़ी बात कह देते हैं कि अगर हम मन मत पे चलते हैं तो मन मत जैसे रावण की मत है. तो इतनी ऊंची मत, इतनी ऊंची पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई, फिर हमें हमारे लिए कुछ मुश्किल होना चाहिए? सब कुछ सहज होना चाहिए ना. जो हम पॉजिटिव चेंज अपने आप में लाना चाहते हैं, जो हम संस्कार परिवर्तन की बात करते हैं, देखो पहला पहला परिवर्तन, जैसे बाबा ने उस मुरली में भी कहा कि पहले संकल्पों में परिवर्तन, फिर अपने स्वभाव में परिवर्तन, फिर अपने संस्कारों में परिवर्तन. तो क्या मुश्किल है? बहुत सहज है. फार्मूला तो ऐसे है, इतना इजी फार्मूला किसी को भी मिल जाए तो बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन भी पास कर सकता है. कितना इजी फार्मूला है. बाबा की एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो परिवर्तन हो वो सदा के लिए हो, कभी कभी नहीं हो. ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी चाहिए, सस्टेनेबल चाहिए. जो भी हम चेंज करें उसको हम संभाल के रख सकें, उस परिवर्तन को अविनाशी बना सकें. क्योंकि हम ये जानते हैं कि संगम में हर कदम कदम में पद्मों की कमाई है. अगर एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ जाता है तो बाबा कहते हैं वो कितने जन्मों की कमाई से लिंक होता है. तो पहले पहले तो हम लोग ये समझते हैं, जीवन के महत्व को समझते हैं कि ये हमारा जीवन हीरे तुल्य है। आपने एक पुस्तक भी देखी होगी, एक पुस्तक भी लिखी गई थी शुरू शुरू की, इस जीवन को हीरे तुल्य कैसे बनाएं, क्योंकि इसको हम डायमंड एज कहते हैं ना। बाकी सभी युगों में हमारी उतरती कला होती है, लेकिन संगम पर हमारी चढ़ती कला है। और कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला में सबका भला निहित है, पूरे संसार का ही परिवर्तन है। अगर हमारा परिवर्तन होता है, आज कोई लोग क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट में परिवर्तन आ गया, इतना कुछ हो गया, ओजोन लेयर में छेद हो गए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, पानी पोल्यूट हो रहा है, सागर में वेस्ट जा रहा है, इतनी बात। फिर उसके अलावा कितनी जगह युद्ध हो रहे हैं और कितनी पॉपुलेशन जो है वो रिफ्यूजी बन रही है, दूसरे देशों में जा रहे हैं। इमिग्रेशन जो है वो, जो रिफ्यूजी है वो एक किस्म से बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है। उसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां खाने को कुछ नहीं मिलता। तो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सब समस्याओं का समाधान क्या है? हम आत्माएं क्या हैं? बाबा हमें कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व परिवर्तक हो, आधार मुहूर्त हो, उद्धार मुहूर्त हो। हम इस बात के रहस्य को समझें कि हमें क्या परिवर्तन करना है, हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो। हमने मूलभूत तो परिवर्तन किया, जैसे बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि पहला संकल्प ही क्या करते हैं, बहुत इजी है संकल्प जो हम करते हैं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? वो कल्प पहले वाली आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं। अगर हम इस बात को अच्छी तरह से इसकी डेप्थ में जाएं कि ईश्वरीय संतान हूं मैं, ये मेरा मरजीवा जन्म है। जब कोई मर जाता है तो उसके पुराने संबंध तो सब समाप्त हो जाते हैं ना। तो पहले पहले तो हमने ये निश्चय किया कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं। इस बात को देखो, वैसे तो शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है, और कभी हम सत्संग में जाते थे या किसी का देहांत हो जाता था, जाते थे, सब लोग कहते ये शरीर तो मिट्टी है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी, ये तो हम समझते थे। लेकिन अब हमारी समझ में क्या परिवर्तन आया? अभी हम कर्म करते हुए ये बुद्धि में रखते हैं कि मैं आत्म अभिमानी होकर कर्म करूं। वो अपने आप को आत्मा समझते थे, लेकिन आत्म अभिमानी होकर चलते तो नहीं थे। अगर हम समझें कि मैं फलाना हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, लेकिन मुझे विस्मृति हो जाए, तो फिर वो नशा तो नहीं रहेगा ना, वो कॉन्शियसनेस भी नहीं रहेगी। एक बार मोहिनी बहन ने क्लास में बात की थी कि कर्म करते हुए अगर हमें स्मृति रहती है, अवेयरनेस रहती है, वो है तपस्या। योग में तो हम बहुत पावरफुल स्थिति बना लेते हैं, लेकिन जब हम कारोबार में आते हैं, गृहस्थ व्यवहार में आते हैं, अपनी ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, या कुछ अपना प्रोफेशन है वो निभाते हैं, उस समय मेरी स्मृति क्या रहती है, उस समय मेरी अवेयरनेस क्या है? वो अवेयरनेस है तपस्या। क्योंकि बाबा हमेशा हमें ये कहते हैं कि हम चलते फिरते उठते बैठते हमारी याद रहे, अपने आप को आत्मा समझना है। योग शब्द भी बाबा नहीं कहते। अभी जैसे बाबा ने पिछले साकार मुरली में कहा कि अशरीरी होकर चलना, आज भी कहा, तो अशरीरी का अर्थ क्या है? कि हम आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए थे, हमने शरीर धारण किया था, अभी हम अभ्यास कर रहे हैं कि हमें घर अपने वापस जाना है, तो अभी फिर से वही प्रैक्टिस है हमारी कि हम आए थे अकेले और जाना भी अकेला है। ये शरीर तो यही रह जाएगा, पांच तत्वों का है। अभी बाबा ये भी कहते हैं कि संगम युग में हमारी फाइनल स्टेज क्या है। बाबा ने मुरली में कहा ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवता तो हम सतयुग की दुनिया में बनेंगे, लेकिन फाइनल स्टेज तो फरिश्ता है। और फरिश्ता डबल लाइट, प्रकाश स्वरूप भी और कोई बोझ भी नहीं। बाबा ने उस मुरली में बोझ की कितनी डेफिनेशन बता दी कि हम अपने आप ही अपने सिर पे माया की टोकरी रख लेते हैं, क्योंकि संस्कार हमारे ऐसे बने हुए हैं ना, हमारी आदतें ऐसी बनी हुई, बार बार हमें देह की स्मृति आती है, बार बार हमें जो देह के संबंधी है उनकी स्मृति आती है। ऐसा नहीं कि हमें कोई संन्यास लेना है, लेकिन अपने जीवन में रहते हुए हमारी स्मृति कहां रहती है, कारोबार करते हुए हमारी बुद्धि कहां जाती है। अगर हम जब योग में बैठते हैं, जब बाबा को याद करने के लिए अमृत वेले बैठते हैं, तो उस समय हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए। दादी जानकी ने कहा था कि अपनी हमारी सबसे बढ़िया चेकिंग होती है ट्रैफिक कंट्रोल में। हम कारोबार कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में हम कितनी जल्दी अपने आप को समेट सकते हैं, कितनी जल्दी अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं सब तरफ से। क्योंकि आप मान लीजिए किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या कुछ कारोबार कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अपनी बुद्धि को समेट कर शिव बाबा की ओर ले जाना, अपने निजी स्वरूप की ओर लेके जाना, अपने निजी स्वधर्म की ओर लेके जाना, वो कितने सेकंड में हम कर पाते हैं। या ये होता है कि पूरा ट्रैफिक का कंट्रोल का गीत बज जाता है, लेकिन हम आप समेटने में ही बिजी रहते हैं। तो वो हमारा रियल टेस्ट है। बाबा ने भी हमें बताया कि हमारा जो अंतिम पेपर होगा वो कैसे होगा, एक सेकंड का होगा। बाबा ने कहा था ना कि कुछ लोगों को तो टचिंग ऐसी होगी वो लास्ट प्लेन से यहां पहुंच जाएंगे, और कुछ हो सकता है यहां से चले भी जाएं कुछ कारोबार के कारण। तो हमें ये देखना है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी अवेयरनेस क्या है। बाबा हमेशा हमें ये कहते हैं कि स्मृति और विस्मृति का खेल है। अगर हम अवेयरनेस में रहते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है हमारे जीवन का। बाबा जैसे कहते हैं ना कि आप चलते फिरते लाइट हाउस हो। आज भी लास्ट मुरली में था कि ब्लेसिंग था कि आपको देखकर, या अव्यक्त इशारा था कि आपको देखकर जीवन में लोगों के उत्साह आ जाए, रिस्पेक्ट देने की बात की थी। अव्यक्त इशारा था कि भाई आप अगर हम स्वमान में रहते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देने का भाव ही है कि उनको जीवन में उमंग उत्साह आ जाए। तो ऐसी हमारी स्थिति हो। आज हम देखते हैं कि साधन तो बहुत है, विशेषताएं भी बाबा ने बच्चों में बहुत दी हैं। बाबा हमेशा ये कहता है कि वीकनेस के जो हमारे द्वार हैं, उनको हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, मैं और मेरा को। लास्ट अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा, जब मैं शब्द याद आए तो वो अपना ओरिजिनल स्वरूप याद आए हमें, जब मेरा शब्द याद आए तो मेरा कौन है वो याद आए। दादी जानकी तीन बार ओम शांति करते थे, तो उनसे पूछते तो वो कहते पहली ओम शांति है मैं कौन हूं, और दूसरी ओम शांति है कि मेरा कौन है, और तीसरी ओम शांति है मुझे क्या करना है। लास्ट में उन्होंने वो तीसरी का अर्थ बताना बंद कर दिया, केवल दो ही बातें बताती थी, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। तो जब भी हम लोग थोड़ा भी समय मिले तो इस लेसन को रिवाइज करें कि मैं कौन, मेरा कितना सर्वश्रेष्ठ स्वमान है, और आज जब हम बात करते हैं मन से सेवा करने की, मनसा सेवा करने के लिए, तो मनसा सेवा भी कैसे होगी? जब हम अपनी सीट पर स्थित होंगे, जब हम अपने तख्त पर तख्त नशीन होंगे, तभी सेवा कर पाएंगे ना। हमारी स्थिति ऊंची होगी, हमारी अवेयरनेस श्रेष्ठ होगी, तभी वो सेवा कर पाएंगे ना। तो अभी हमें सोचना ये कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, वो श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, क्योंकि हम हमेशा ये तो बुद्धि में रखते हैं कि अभी घर वापस जाना है, लेकिन घर वापस जाने से पहले हमें ये भी स्मृति में है कि घर तो हमें थोड़ी देर रहना है, फिर तो हमें सतोप्रधान दुनिया में जाना है। तो यहां हमें सतोप्रधान संस्कार भी तो साथ लेके जाने। सतोप्रधान का मतलब ये है कि सारे सर्वगुण संपन्न हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं परफेक्ट हूं, वो यहां ही तो बन के जाना है। घर जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, बेहद का वैराग्य भी है, हम समेट भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने सतोगुणी संस्कार तो बनाने हैं। सतोप्रधान दुनिया में जाना है, सतयुगी संसार में जाना है, तो उसके लिए वो तो बनाना पड़ेगा ना। तो सतोप्रधान दुनिया की भी तो तैयारी करनी है, सर्वगुण संपन्न भी बनना है ना। तो बाबा ने यही कहा ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। देवता का मतलब जिसमें सर्वगुण हो, और साथ में देवता के लिए ये भी कहा जो दाता हो, लेवता नहीं हो। तो वो स्थिति बनानी है हमें, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम सबका अकेला अकेला है। देखो, हमारे शब्द भी सबको सुनाई देते हैं, हमारे कर्म भी सबको नजर आते हैं, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो हमारे संकल्पों की श्रेष्ठता है वो किसको पता लगेगी? वो तो हमें खुद को पता है कि हमारे सारे दिन में कैसे संकल्प चलते हैं, क्या हमारे संकल्पों की श्रेष्ठता है, क्या हमारे संकल्पों की ऊंचाई है, वो हमें चेक करना है, वो कोई और जांच नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे पहले भी हमने सुना कि संकल्प बीज है, अगर हमें संस्कार परिवर्तन करना है, अगर हमें अपने आप में ब्राह्मणों को भी पॉजिटिव चेंज लाना है अपने आप में, तो संकल्प बीज को कनेक्ट करना है उस बीज पिता से, और बुद्धि में सोचना है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से शब्द हैं, कौन से संकल्प हैं, कौन से क्षण हैं जो मुझे बाबा के समीप लेके आते हैं। ये चेकिंग करनी है हमें, और कौन से ऐसे संकल्प हैं, या कौन से ऐसे क्षण हैं, या कौन से ऐसे अनुभव हैं जो बाबा से मुझे दूर ले जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि अभी ये जो समय रह गया है, इस समय में मुझे अपने लिए क्या करना है। क्योंकि जैसे हम ये जैसे लास्ट का समय है, बच्चे भी जब एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कठिन बातें होती हैं, उसको अटेंशन देते हैं। तो हमें भी अपनी कठिन बातों को ध्यान में देना है। हम कहते हैं, अब सबसे पहले हमें करना क्या है? मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो हमें समेटना है सब कुछ। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये कर लें, हम ये पढ़ाई पढ़ लें, हम ये नया बिजनेस शुरू कर दें। पहले पहले तो हमें विस्तार को समेटने की जरूरत है, अपने समय के महत्व को जानने की जरूरत है। क्योंकि बाबा बार बार हमें एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है हमें अनेक आत्माओं की सेवा करनी है, अभी बहुत लोगों तक बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है, लेकिन उस संदेश का तरीका भी बाबा ने बताया कि हम डबल सेवा करें, संकल्पों से भी सेवा हो, शब्दों से भी सेवा हो, हमारी वाइब्रेशन से भी सेवा हो। उसके लिए जो दादी जान की तीन शब्द कहती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी, हमें हर चीज में ट्रुथफुल बनना है, हर चीज में हम उस सत्यता को समझकर, सत्यता जो हमारे जीवन की फाउंडेशन है, वो जो अविनाशी सत्य है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध परमात्मा से है। सर्व संबंध, सर्व का मतलब सर्व, जितने भी मेरे संबंध हैं, जो भी संबंधों की मुझे खिंचाव होती है, इसका मतलब उस संबंध की अनुभूति मुझे बाबा से नहीं है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से हो। साधन जो है वो ना साधन हमें अट्रैक्ट करे, ना वैभव अट्रैक्ट करे, ना व्यक्ति से प्रभावित हो हम। बाबा ने कहा विशेषताएं अगर हम देखते हैं किसी में या हमारे में भी विशेषता है, तो उस समय भी हमें क्या सोचना है कि देने वाला कौन है। दाता तो बाबा है ना। बाबा ने एक मुरली में, ये भी शायद लास्ट से लास्ट व्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा कि सब चीजों को समाप्त करने का एक है, देह भान को भी, देह अभिमान को भी, कि करण करावनहार कौन है। ये स्मृति रहे। हमारे जीवन में भी जो परिवर्तन हुआ है, जो प्राप्ति हुई है, वो कहां से आई है हमारे पास? जो बाबा ने हमें श्रीमत दी, जो बाबा ने हमें पालना दी, जो बाबा ने हमारी परवरिश की, जो पढ़ाई पढ़ाई, वही तो फाउंडेशन है। कभी कभी हम उनको अपनी विशेषता मान लेते हैं, तो वहां मुश्किल हो जाती है। तो पहले पहले इस सत्यता को पहचानना है कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। फिर बाबा ने हमें क्या कहा कि देखिए, अभी जो लोगों को जरूरत है वो हमारे रहम की है, हमारी कंपैशन की है, हमारी करुणा की है। अगर हम रहम दिल होंगे तो आप अहंकारी तो नहीं हो सकते। जो दाता होता है वो तो निर्माण होता है। रहम दिल होंगे तो इसका मतलब हमारी जो देने की भावना है वो हमारी, हमें आगे बढ़ाएगी, हमें शक्तिशाली बनाएगी। तो हम निरहंकारी भी बनेंगे, निर्विकारी भी बनेंगे और निराकारी स्थिति की भी स्मृति आएगी। जो बाबा की लास्ट फाइनल स्टेज के तीन शब्द थे वो हम सबने सुना है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ये चीजें, जब ये फाउंडेशन बनेगी, इस फाउंडेशन से ही हमारे जीवन में परिवर्तन भी आएगा। अभी हम जब बात करते हैं कि ये फाइनल समय है, इस समय हमें अपने आप को वानप्रस्थी समझना है, वाणी से परे जाना है। हमारे जीवन में समझ भी कहां से आती है? समझ भी तब आती है जब हम एकाग्र होकर सोचते हैं। एकाग्रता चाहिए, फोकस्ड अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं। हमारा फोकस कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, पुरुषार्थ को सोचते सोचते हमारा ध्यान कहीं और भी चला जाता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बना रहा है, किसी के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, किसी को क्या उपलब्धि मिल रही है, तो उस तरफ बुद्धि भी चली जाती है। तो हमें तो अभी विस्तार को समेटना है, सार में लेकर आना है, सच्चा सच्चा राज ऋषि बनना है, वो परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। रॉयल्टी भी चाहिए, हमें ग्रेसफुल भी होना है, हमें दाता भी बनना है, लेकिन साथ साथ वानप्रस्थी भी बनना है। हमारी बुद्धि कहीं नहीं जाए, देते हुए भी, बाबा जैसे कहते ना, देते हुए भी देने का भान नहीं हो। जो सूक्ष्म चीजें हैं जिनसे हमें रुकावट आती है, हम सबको वही अपनी चेकिंग करने की जरूरत है, कौन सी सटल चीज है जिससे मुझे रुकावट होती है, जिससे मेरा पुरुषार्थ ढीला होता है। और हर एक की अपनी अपनी बात होगी, तो वो चेकिंग करने की जरूरत है, कहां मुझे रुकावट होती है, कौन सी चीज ऑब्स्टेकल है, कौन सी चीज से मेरे पुरुषार्थ में लीकेज होती है, उस लीकेज को प्लग करने की जरूरत है। इसलिए बाबा शुरू से हमें ये इस बात का महत्व देते हैं कि हमें ना केवल पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी चेकिंग भी करनी है, अपना चार्ट भी रखना है, और वो चार्ट की भी हम जैसे जैसे हम पुरुषार्थी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो चार्ट की जो गुह्यता है वो भी हमें समझ में आ रही है। बाबा ने जैसे अभी कल की मुरली में था स्वीटनेस की बात की, अभी हमें ये चेकिंग करने की जरूरत है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में हमें कहा कि हमारे अंदर कड़वेपन की कोई लकीर तो नहीं है, किसी के प्रति हमारे मन में घृणा तो नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं बाबा कितनी जिम्मेवारी अपनी समझता है, कितनी मेहनत हमारे ऊपर करता है, हर चीज को इतनी एलेबरेटली क्लियर कर देता है, स्पष्ट कर देता है, हमें इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि कोई मार्जिन नहीं रहता कि हम वेवर कर सके, हम विचलित हो सके, हमें कोई मार्जिन ही नहीं है। इतनी चीजों की स्पष्टता दे दी बाबा ने। पहले तो भक्ति मार्ग में तो हम इतना ही सोचते भाई किसी को दुख नहीं दो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, यही बातें सुनते थे। लेकिन अभी बाबा ने हमें कितनी गहराई समझाई है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा ना कि किसी की खामी ही नहीं, आपके मन पे किसी का अवगुण ही नहीं आए, नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी देखें। अभी ये देखना कि पॉजिटिव हम सदा कैसे रहें, क्योंकि उन्नति हमारी उस बात में है। हमारा परिवर्तन स्थायी तभी हो सकता है जब ये चीज निरंतर हमारी स्मृति में रहे, हमारी बुद्धि जो है वो जो इनसाइट हम जिसे कहते हैं, वो इनसाइट में क्या है हमारी। मैं कभी कभी बचपन में ये सोचता था, अभी वो महात्मा बुद्ध के बारे में कहानी सुनाते थे कि बुद्ध ने कितना विचरण किया, वो एक पेड़ के नीचे बैठे और उनको एनलाइटनमेंट हो गई। थी तो बात वो स्प्लिट सेकंड की, जब उनको वो स्पिरिचुअलिटी का राज समझ में आ गया। जब हमारी बुद्धि में वो एनलाइटनमेंट हो जाएगी, जितना हम गहराई से करेंगे, अध्ययन उसके लिए बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। क्योंकि भले हम मुरली सुनते हैं, भले हम अपने नित्य अमृत वेला करते हैं, लेकिन स्टडी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम स्टडी करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे, एक भाई मुझे सुना रहे थे कि वो 4 घंटे स्टडी करते हैं तो 2 घंटे ध्यान कर पाते हैं। तो हमारे लिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो भी सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। हर पहलू को सिर्फ स्टडी ही नहीं करना, लेकिन उसके ऊपर हमारा चिंतन भी चले, मनन भी चले। जैसे बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड होता है, जो नशे में होता है, दूसरा नशा कर लेता है, उसको कुछ थोड़ी पता लगता। तो हमारी भी इंटॉक्सिकेशन की स्टेज ऐसी हो कि हमें नेगेटिविटी नजर ही नहीं आए। कोई ऑब्स्टेकल है, कोई हर्डल है, कोई रुकावट है, हमें नजर ही नहीं आएगी। हम तो धरती से ऊपर उड़ रहे हैं ना, ऊंचे हैं, फरिश्ते हैं, डबल लाइट है, तो फिर हमें वो कैसे नजर आएगी। तो इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना, इंटॉक्सिकेशन होना, नशा होना, जिस नशे की बाबा बात करते हैं, नारायणी नशा। पढ़ाई हमने पढ़ी है, लेकिन पढ़ाई को ऐसा जीवन में समा लेना कि हमारे हर संकल्प से, हर वाइब्रेशन से वो पढ़ाई बाबा की स्पष्ट हो। बाबा कहते हैं ना, आपकी सूरत और सीरत से नजर आए। अब जो साक्षात्कार की बात होती है, जो कहते हैं ना साक्षात्कार होता है, तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। अभी आप देखिए, हम लोग जब दादियों से मिलते थे, मिलते मुश्किल से 5 मिनट के थे, लेकिन वो 5 मिनट की अनुभूति या 3 मिनट की अनुभूति भी कितनी पावरफुल होती थी। तो भाव ये समझने की बात है कि आज जीवन में हमें वो जो शक्ति मिलेगी, जो मुश्किलों को हल करने के लिए, अपने संस्कारों के चैलेंजेस को सामना करने के लिए वो शक्ति मिलेगी हमें, ज्ञान के आधार से, पढ़ाई के आधार से रास्ता हमारा क्लियर होगा। और वो योग तो फिर स्वतः ही लग जाएगा। हम जब इस बात को गहराई से समझ लेते हैं कि मैं बीज रूप आत्मा हूं और मुझ आत्मा के सर्व संबंध उस सच्चे पिता से हैं, और मैं अभी अपनी फाइनल जर्नी पे हूं, मैं ट्रैवलर हूं। ट्रैवलर क्या करता है? अभी लोग भी घूमने जाते हैं तो उनके पास कितना सामान होता है। विदेश के लोग तो एक बैकपैक होता है, उसमें सब कुछ डाल लेते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि मिनिमलिस्टिक, कि हमारे जो जरूरतें हैं वो कम से कम हो। पहले हम जो बातें सुनते थे बचपन में, लोग कहते थे कि जो बड़े लोग हैं उनकी उनकी लाइफ का मोटो होता था सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, लेकिन आज तो विपरीत हो गया। तो हमें वो अपनी जरूरतों को, अपनी, जैसे बाबा हमें फाइनल स्टेज हमारी क्या बताते, इच्छा मात्रम अविद्या, हद की इच्छाएं। पुल क्या करती है व्यक्ति को, कौन सी चीज खींचती है? वो हद की इच्छाएं, हद की प्राप्तियां, मुश्किल की भी अविद्या हो। बाबा तो कभी कहते हैं ना, बच्चों को मेहनत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत से पुरुषार्थ करें। तो मुश्किल उसकी भी अविद्या हो जाए, मेहनत हो ही नहीं हमारे जीवन में, तो वो जो राज ऋषि की स्टेज है, हमारे विचारों में इतनी लाइटनेस हो। कभी कभी हम सोचते हैं हमें जो कुछ मिला है, जो बेहद की प्राप्ति हुई है, वो दुनिया में किसी को नहीं है। क्योंकि संतुष्टता कैसे आती है, कंटेंटमेंट कैसे आती है? बहुत साधन हो लेकिन जब जीवन में खुशी होती है, जब जीवन में वो लाइटनेस होती है, तो कंटेंटमेंट आती है। लाइटनेस का अर्थात कोई प्रेशर नहीं, कोई आपकी लिमिट नहीं, किसी हद में आप नहीं फंसे हुए हैं। जब बेहद का दृष्टिकोण है, यूं देखिए बाबा ने हमें आरंभ से ही अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस दी है। हमारी कॉन्शियसनेस में ही परिवर्तन आ गया जब पता लग गया कि ये संसार एक नाटक है, उसमें हम एक्टर्स हैं, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो जब रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें अपना रोल भी अप्रिशिएट करना है और दूसरों का रोल भी अप्रिशिएट करना है, तो फिर उसमें असंतोष की बात ही नहीं है। डिसकंटेंटमेंट कहां से आएगी? और जब कंटेंटमेंट होगी तो फिर कोई इच्छा नहीं। तो वो जो फाइनल स्टेज है हमारी, वो इच्छा मात्रम अविद्या वाली। फिर बाबा जैसे हमें कहते हैं कि हम किसी के अधीन नहीं होंगे, अधिकारी होंगे। जो कमजोर होता है, बाबा ने ब्राह्मण की डेफिनेशन भी बताई ना, मौज में रहने वाला, मायाजीत, तो वो अधिकारीपन का नशा, अधीन नहीं, मजबूर नहीं। तो वो अधिकारीपन का अर्थ तभी है जब हम अपने स्वमान में है, अपने स्टेज पर है। जो ब्राह्मण जीवन, जो संगम युग के हमें श्रेष्ठ स्वमान मिले हैं, चाहे वो स्वदर्शन चक्रधारी है, चाहे वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, चाहे हम विश्व कल्याणकारी हैं, इन बातों को जब हम स्मृति लाते हैं तो फिर हमें क्या कमी होगी? हमारे ऊपर जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। हम बाबा के साथ उनके मददगार हैं, ईश्वर को हमारी मदद चाहिए, मददगार हैं भगवान के हम, तो इसका भी कितना नशा होना चाहिए। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं दिखाते हैं, हम सब ब्रह्मा की भुजाएं हैं ना, हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा की भुजाएं हैं। ब्रह्मा ने जो विश्व परिवर्तन का कार्य किया और कर रहे हैं, उसमें हम मददगार हैं। तो ये स्मृति जब रहती है, हम सब यात्रा पर हैं, हम ट्रैवलर हैं, और हमारी जर्नी कहाँ की है? जो बाबा हमें पांच स्थितियों का वो बोलता है, पांच हम अपनी स्टेजेस का हम अभ्यास करें। केवल रेपिटेशन नहीं है, लेकिन उस समय वो संस्कार इमर्ज करने की जरूरत है कि सतयुग में हमारे संस्कार कैसे होंगे, बाबा ने एक मुरली में सतयुग की दिनचर्या भी बताई, तो हमारे संस्कार कैसे होंगे, हमारी स्थिति कैसे होगी। तो वो सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करने की जरूरत है और जो कलयुगी संस्कार है उनको मर्ज करने की जरूरत है। वो पुरानी बात हो गई, वो बात जो है पास्ट की हो गई। हमें तो भविष्य का सोचना है, हमारे यहां भविष्य कितना उज्जवल है। हमें जरूर दुनिया में सबको अंधकार नजर आता है, लेकिन हमें तो अंधकार में भी प्रकाश नजर आता है। हमें पता है कि हम सिक्योर हैं, हम सेफ हैं। अब कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कितनी मुश्किल हुई थी, लेकिन हमें महसूस ही नहीं हुआ, मधुबन में थे। बाबा पालना कर रहा है ना हमारी, हमारी सेफ्टी इसी में है कि हम अपने कनेक्शन को अविनाशी बनाएं। जब कनेक्शन टूट जाता है तब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये स्मृति भी जो हम बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, ये स्मृति दिलाने का रहस्य ही है कि हमें अपने आप पर विश्वास हो कि ये पार्ट हमने प्ले किया है। हम ही वो कल पहले वाली आत्माएं हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, अपने संस्कारों पर भी विजय प्राप्त की थी, अपने कमियों पर भी विजय प्राप्त की थी, अपने आप को जीवन में परिवर्तन किया था। अब जरूर हमारे सामने कुछ कठिनाइयां, लेकिन हम फिर से कर सकते हैं। तो ये जो यात्रा है हमारी, हम ट्रैवलर हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी फाइनल स्टेज क्या है? फाइनल स्टेज है हमें बाबा पर बलिहार जाना है। जब वो उसमें, जैसे लोग तो कहते हैं ना कि भगवान में लीन हो जाएं, यहां लीन होने की बात तो नहीं है। बाबा कहते हैं बलिहार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अपने आप को टोटली समर्पित कर दिया, तन भी मन भी धन भी बुद्धि भी संकल्प भी श्वास भी, और फिर बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर चलो। तो वो फाइनल स्टेज तो ये कि हम बाबा पर कंप्लीटली बलिहार जाएं, फिर उसमें और हम में कोई भेद ही नहीं रह जाए। मुझे याद है कि हमारे कभी कभी हम लोग कुछ शॉपिंग करने जाते थे, तो हमारे बड़े बहन जी जब कुछ हिसाब सुनाते तो वो कहते थे कुएं की मिट्टी कुएं में, घर तो एक ही है, कुछ भी हम हिसाब करें। तो इसलिए हमें ये अंतर ही नहीं नजर आए कि हमारा और बाबा के यज्ञ में कुछ अंतर रह गया है। एक ही परिवार है, एक आप संभाल रहे हैं, आपको निमित्त बनाया है, और दूसरा यज्ञ है जो समर्पित भाई बहने रह रहे हैं, बुद्धि से समर्पित। तो वर्चुअली हम लोग एक हैं। वो जब बाबा पर बलिहार जाएंगे, जैसे वो बाबा पर लीन हो जाएंगे हम, वो हमारी फाइनल स्टेज है। जब कुछ अपना पराया रहे ही नहीं, तो वो जब रियलाइजेशन होगी वो हमारी फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज हमारी वो है जहां हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं। फाइनल स्टेज हमारी ये है कि हम इच्छा मात्र में विद्या हो जाएं। फाइनल स्टेज हमारी ये है कि हमारी बुद्धि जो है वो उसको टच वही करे जो हमारे लिए जरूरी है। दादी जानकी कहती थी, वैसे तो बाबा के गुण कहते हैं कि वो अकर्ता है, असोचता है, अभोक्ता है, लेकिन हम आत्मा भी उस स्टेज को अचीव कर सकते हैं। जब हम बाबा की छत्र छाया में आ गए तो हमें सोचने की जरूरत है क्या? सोचेगा तो वो। अभी मुझे ORC से एक वो मिला था, छोटा सा स्लोगन, उसमें लिखा था जो बाबा की याद में रहते हैं उनके लिए सोचता भी बाबा है। फिर अकर्ता, कर्तापन का भान ही ना हो, जैसे बाबा ने कहा करण करावन हार। फिर अभोक्ता, जैसे हम स्थूल, जैसे अपने शरीर की हम संभाल कर रहे हैं, शरीर की पालना कर रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां किसी चीज की तरफ पुल नहीं हो, वो है अभोक्ता की स्टेज। शरीर की संभाल तो करनी है, लेकिन जिसको हम लगाव कहते हैं, जिसको हम खिंचाव कहते हैं, जिसको हम झुकाव कहते हैं, या किसी चीज में हम बहुत ही ज्यादा अच्छा समझने लग जाते हैं, तो वो होता है। तो हमारी फाइनल स्टेज ही यही है कि हम लाइट हों, शरीर भी हमारा लाइट का और मन बुद्धि से भी लाइट हो, कुछ भी चीज हमें पुल नहीं करे। रहना तो इस संसार में है। वो जो कहानी एक सुनाते हैं कि राजा जनक के लिए किसी ने आके उससे पूछा कि राजा जनक, आपको विदेही कहते हैं सब, आप ये राज कारोबार चलाते हुए भी विदेही कैसे हो? तो महात्मा थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, तो राजा सिर्फ केवल थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, उनको कहा बताएंगे आपको अर्थ। अगले दिन राजा ने सन्यासी को एक दीपक दिया, कहा और कहा कि राजा, महात्मा को बोला कि मेरा सारा महल देख के आओ आप, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये दीपक बुझने नहीं पाए। तो सन्यासी सारा चक्कर लगा के वापस आ गया, तो राजा ने पूछा आपने महल में क्या देखा? उसे कहा, राजा मैं तो महल में कुछ नहीं देखा, मेरे को तो यही ध्यान था कि ये दीपक बुझने नहीं पाए। तो हमारा दीपक भी जगता रहेगा तो कोई भी चीज हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो हमारी जो फाइनल स्टेज संगम युग में, जो इस ब्राह्मण जीवन में हमें अचीव करनी है, जो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख लाभ हानि रोग शोक में एक रस स्थिति, योगी की डेफिनेशन वही बताते कि कुछ भी हमें टच नहीं कर पाए, संकल्प मात्र भी टच नहीं कर पाए, कुछ भी हमें अफेक्ट नहीं कर पाए, वो पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। क्योंकि दुनिया में दुख में लोग दुखी होते हैं, मुश्किलों में परेशान होते हैं, तो अगर ब्राह्मण भी वही सिचुएशन में रहेंगे तो फिर क्या होगा? हमें तो सबको सहारा देना है ना, सबको हिम्मत देनी है, सबको हमें रास्ता दिखाना है। अगर हम ही उलझ गए तो फिर रास्ता कैसे दिखाएंगे? मुझे याद है एक बार हमारे एक मित्र थे, उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, मैं यंग था, 24-25 का था, वो बुजुर्ग थे, तो उनके पास मैं गया। अब मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि मैं उनको क्या बोलूं, मेरे से बड़े हैं, तो मैं तो सिर्फ याद में वहां जाके बैठ गया। तो बाद में उन्होंने मुझे शेयर किया कि जब आप आए तो मुझे लगा कि मुझे कोई हिम्मत दिलाने वाला है। तो भाव ये कि हमारी सेवा केवल शब्दों में नहीं है, लेकिन हमारी सेवा हमारी स्थिति से है। हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन केवल अभी करना यह है कि ज्ञान की गुह्यता में जाना है, ज्ञान के चिंतन में रहना है, ज्ञान के सार में खोए हुए रहना है, लॉस्ट। बाहर की दुनिया पता ही नहीं, बाबा ही हमारा संसार है, बाकी सारी दुनिया तो असार है। वो जब फीलिंग आएगी हमें, वो जब अनुभूति होगी, तब हमें लगेगा कि हमने अपने आप पर विजय प्राप्त की है। जैसे कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। तो मन का अर्थ क्या है? हमारे संकल्प। बाबा तो कहते हैं जीतना तो माया को है, लेकिन यहां मन को भी जीतने की बात है। हमारी कर्मेंद्रियों के हम मास्टर बने, स्वराज्य अधिकारी बने, वो है हमारी फाइनल स्टेज। जहां हम चाहें, जितना हम चाहें, उतना समय हम लगा सके, वो हमारे अधिकार में हो। कर्मेंद्रियों को हम कैसे यूज करें, वो मास्टरी, जिसको लोग सेल्फ मास्टरी कहते हैं, सेल्फ सॉवरन बने हम। तो वो सेल्फ सॉवरन बनने के लिए हमारे पास बहुत साधन है। बाबा ने अथाह हमें युक्तियां बताई हैं, बाबा ने हमें बहुत क्लैरिटी से बताया है। वही है कि ये जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए हमें लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, और जो हमारे टेस्ट आएंगे वो अचानक आएंगे। जो ड्राइवर अच्छा होगा वो केवल ना अपने अपने आप से तो अलर्ट रहेगा, लेकिन दूसरे जो साथ में चलने वाले उनसे भी अलर्ट रहेगा कि समस्या उधर से भी आ सकती है। तो हमें अलर्ट ड्राइवर बनना है, हमें बड़ी एक्यूरेटली और अलर्ट से अपनी जीवन के गाड़ी को चलाना है, फिर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, इतनी शक्तियां लगाते हैं, इतना धन लगाते हैं, इतने संकल्प लगाते हैं, उसका इम्पैक्ट नजर आना चाहिए, हमें अपने आप को भी महसूस होना चाहिए। क्योंकि हमें महसूस होगा कि हमारे जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, अभी ये चीजें मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं, तो मुझे अपने इम्पैक्ट को खुद ही असेस करना है। अभी तो साइंस के साधन भी आ गए, वो एग्जैक्टली आपको बता देंगे कि आपकी स्टेज क्या है। जो आप निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति की बात करते हैं, पेट स्कैन्स आ गए हैं, पेट इमेजिंग आ गई है, एमआरआई आ गए, जिसमें न केवल उस स्ट्रक्चर को बताते हैं लेकिन फिजियोलॉजी को भी बता देते हैं, हमारी वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए, आप दुनिया में अपने आप को स्टेबल करने की, पहले अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे फिर अपने आप को हम बाबा को जो प्रत्यक्ष करने की बात सोचते हैं वो कर पाएंगे। पहले हमारे जीवन में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो एकरस स्थिति चाहिए, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, तब हम मन से सेवा भी तब कर पाएंगे, हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं, साकाश दे सकते हैं। लेकिन जो हमारी सेवा निरंतर चलनी चाहिए, एक रस चलनी चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। और वो मेहनत यही है कि हमारा फोकस इनवर्ड होना चाहिए, हमारी तपस्या अवेयरनेस में है, हमारी तपस्या इस बात को समझने में है कि हमारा संसार बाबा है, हमारे लिए कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता। भले वो एग्जिस्ट करता है, हम कारोबार में आते हैं, निमित्त कार्य करते हैं। अब आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं, इतने बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वही हमें पुल करती है। तो जो हम वैराग्य की बात करते हैं या डिसइंटरेस्ट की बात करते हैं, वो भी नेचुरल हो जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी दृष्टि नहीं जाएगी क्योंकि हमारी वृत्ति चेंज हो गई है। जो इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन है, कर्म से भी इंटेंशन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी इंटेंशन क्या है। हम भोजन कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से कर रहे हैं, बाबा का है सब कुछ। अगर हम उस भाव से कर रहे हैं, हमारी वृत्ति शुद्ध हो गई है, हमारे संकल्प पावरफुल हो गए हैं, प्योरिटी है उनमें, रॉयल्टी है, तो हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो हमें अपने जीवन में यही समझना है कि ये जीवन हमें मिला है हर संकल्प को सफल करने के लिए, हर कदम में हमारे पदम है। हम इस बात के महत्व को समझें और ट्रस्टी होकर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको हम संभालेंगे, ट्रस्टी होकर हम अपने आप को भी मैनेज करेंगे। जो ट्रस्टी होगा वो डिफेंड नहीं करेगा, ट्रस्टी अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा क्योंकि वो ट्रस्टी है, वो साक्षी होकर देख रहा है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तो हमें साक्षी होकर अपने आप को देखना है और बाबा को साथी बनाकर चलना है, तो हमारा सब परिवर्तन आसान हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं रहेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। मुश्किल तभी होती है जब हम अपने लिए वो विस्तार क्रिएट कर लेते हैं, संकल्पों का संसार क्रिएट कर लेते हैं। अभी तो हमें वही वो असोचता भी बनना है, अकर्ता भी बनना है और अभोक्ता भी बनना है। ओम शांति।